नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसारूढम सुरासुरेन्द्र नरेन्द्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परनिष्ठ पण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है शरण। यह ग्रंथाधिराज प्रवचन सार जी है आचार्य कुंदकुंद की बहुत उत्कृष्ट यह रचना 2000 वर्ष पहले एक महाशास्त्र की रचना हुई ऐसा दार्शनिक ग्रंथ है जो 2000 वर्षों से सैकड़ों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया जाता रहा है। माने जैन परंपरा का यदि कोई ग्रंथ यूनिवर्सिटी स्तर पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है तो उसमें नाम आता है प्रवचन सार का, और उसका कारण है इस प्रवचन सार की वस्तु व्यवस्था। जो इसमें वस्तु स्वरूप का चित्रण किया गया है, प्रमाण प्रमेय का चिंतन किया है, अद्भुत है वो चर्चा। वस्तु कैसी है, आत्मा कैसा है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञेय क्या है जो ज्ञान का विषय बनते हैं, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं उठाई है। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत कठिन ग्रंथ है, समय सार सरल है और प्रवचन सार कठिन है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की टीका देखते हैं तो उसमें भी हमारे को बहुत कठिनता दिखती है, लेकिन मैं यहाँ बहुत सरल विषय इसमें लेने वाला हूँ। इसकी 79 नंबर की गाथा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 80 नंबर की गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है, जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पज्जय तेहम सो जानदि अपाणम मोह खलु जादि दसलहम। जो अरहंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। ये 80वीं गाथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों के और अपने मिलान की चर्चा की है, लेकिन ये 79 नंबर गाथा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहेंगे साहब सब लोग 80वीं गाथा की बात करते हैं, आप 79 की बात करते हो, क्योंकि इसका विषय कुछ अलग ही प्रकार का है। बहुत अद्भुत बात कही है, ऐसा लगता है जैसे हमारी मान्यताओं पर चोट किया है। और ये जो 79 गाथा का जो प्रकरण है, यह प्रकरण इससे कुछ पहले 77 गाथा से शुरू हुआ। मैं यदि 77 नंबर की गाथा की चर्चा करूं तो वहां उन्होंने कहा है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात ये। सरल शब्दों में कह दिया, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये तो सच्ची बात है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आछिन्न वे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी इस 77वीं गाथा में प्रवचन सार में मूल पंक्तियों में ये बात कहते हैं कि भैया पुण्य और पाप एक समान है। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनके ऊपर मोह हावी हो गया है और वो संसार में ही परिभ्रमण करने वाले हैं, संसार में ही भटकेंगे। जी जरा हम यदि अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हमें तो क्या अच्छा लगता है। पाप तो किसी को पसंद आता नहीं है, भले ही अपना समय काल पाप में ही बिताते हो। जो लोग पाप में अपना काल बिताते हैं उनको भी पसंद तो पुण्य ही आता है। तो दुनिया में जितने लोग हैं पुण्य और पाप में ऐसा झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा महान है, कौन श्रेष्ठ है, तो पुण्य ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, पाप ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो पुण्य ने कहा कि नहीं नहीं लोग मुझे चाहते हैं। तो पाप ने कहा अरे तुझे कितने लोग करते हैं, तुझसे ज्यादा लोग तो मुझे अपनाते हैं, पाप को ज्यादा लोग अपनाते हैं। तो पुण्य ने जवाब दिया भले ही ज्यादा लोग पाप करते हो लेकिन पुण्य को तो 100% लोग चाहते हैं। धार्मिक को छोड़ करके यदि हम बात करें, जो अंतरात्मा है उनको छोड़ के यदि हम बात करें, तो जितने बहिरात्मा हैं वे भले चोरी करने वाला भी चोरी को भला नहीं कहता, हत्या करने वाला भी ये कहता है कि ये काम अच्छा नहीं है, चाहता तो पुण्य को ही है। यहाँ यही बात कहना चाह रहे हैं कि भैया पुण्य हो चाहे पाप हो ये दो नहीं है, इन दोनों में भेद करना ये बहुत बड़ी भूल है। और समयकार की इस तरह की बहुत सारी गाथाएं हैं, यहाँ हम आपने कई बार पढ़ी होंगी, पुण्य पाप एकत्व अधिकार जो समयकार में लिखा है, पूरा का पूरा अधिकार ही आचार्य कुंद स्वामी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए समर्पित कर दिया। एक को लोहे की बेड़ी और एक को सोने की बेड़ी कह दिया। अपने को विस्तार में नहीं जाना है, सबने सुनी है बात, लेकिन एक अच्छी दिख रही है और एक खराब दिख रही है, लेकिन बंधन तो दोनों में ही है। किसी भी प्रकार का बंधन हो, पाप का बंधन हो चाहे पुण्य का बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है, स्वतंत्रता तो दोनों में ही है। अब बनारसी दास जी ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर छंद लिखा, उन्होंने एक को ब्राह्मण के पुत्र कहा और एक को चांडालिनी के पुत्र कहा। सुने सबने बहुत गजब उदाहरण दिया है, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो ब्राह्मण के एक घर राख्यो है। ब्राह्मण को दे दिया एक पुत्र और एक अपने घर में रख लिया चंडालिनी ने, चंडाल मांसाहारी हत्या करने वाले। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, जुड़वा पुत्र हुए तुन तुए, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो ब्राह्मण के एक घर राख्यो है। ब्राह्मण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिन्ही मध्य मास चाख्यो है। जैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। जिस तरह से चांडाल के दो पुत्र, एक पुत्र ब्राह्मण के यहाँ चला गया और दूसरा पुत्र चांडालनी के यहीं रहा, जो ब्राह्मण के यहाँ चला गया उसने मध्यमांस का त्याग कर दिया और जो चांडालनी के यहाँ रहा वो मध्यमांस का सेवन करने लगा, हैं तो दोनों चांडालनी के पुत्र। ऐसे ही कहते हैं वेदनी कर्म के भी दो युगल पुत्र है, एक का नाम पुण्य है और एक का नाम पाप है। ऐसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। किंतु दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, या के ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। इसलिए ज्ञानवंत जो है, ज्ञानी जीव जो है, वो उन दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों में दौड़ धूप दिखाई देती है। अरे पाप में तो आकुलता है ही, पुण्य में भी तो आकुलता है। इसलिए जो धर्म है, जो सुख शांति का मार्ग है, वो पुण्य पाप से पार मार्ग है सुख शांति का। पुण्य और पाप से पार वो सुख शांति का मार्ग है, वो अपने को अपनाने योग्य है। सब जगह पर एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों ग्रंथों में पुण्य और पाप के एकत्व पने की चर्चा की है। दुनिया में लोग ऐसे भी मिलते हैं, औरों की क्या बात करें, जैन में ही, जैन संप्रदाय में ही हमारे इस तरह के लोग मिलते हैं, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब जो ये कहते हैं कि मेरी पाप बुरा है और पुण्य भला है, सब की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ, आप पुण्य के बारे में ऐसा क्यों कहते हो, पुण्य के बारे में तो आप ऐसा मत कहो, पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो करने योग्य ही है, आप पुण्य को भी हे कहोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसा कहकर के पुण्य को रखने की बात करते हैं। अरे भाई, पुण्य रखने योग्य नहीं है, हम उस मान्यता पर चोट करते हैं। हम पुण्य का निषेध नहीं कर रहे, हम शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे, हम शुभ भाव में उपादेय बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। ये बात कितना फर्क है दोनों में।
मुझे क्या कहते हैं, फायदा कारक है।
हाँ,
वो बुद्धि का निषेध कर रहे
हैं। ऐसी बात है, पुण्य मेरे को भला करने वाला है, पुण्य से मेरा हित हो जाएगा, पुण्य मुझे लाभ पहुंचा देगा, इस बुद्धि का निषेध कर रहे हैं, इस मान्यता का निषेध कर रहे हैं। जो कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि पुण्य श्रेष्ठ है, पुण्य बहुत अच्छा है, पुण्य करने से अपना भला होता है, पुण्य करने से धर्म होता है, जो लोग पुण्य को ही धर्म मान करके बैठे हैं, उनको यहाँ पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं कि पुण्य में तुम्हारे को भाग दौड़ दिखती है या नहीं, पुण्य क्रियाओं में तुम्हारे को आकुलता दिखती है कि नहीं। तो पुण्य भी आकुलता का ही कारण है, तो हमने कल शाम को चर्चा की थी, दुख रूप है, दुख स्वरूप है। आकुलता दुख का कारण है, और आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए, ऐसे अपन ने बात की है कल। तो पुण्य में दौड़ धूप दिखाई देती है, पुण्य में भाग दौड़ दिखाई देती है, पुण्य में आकुलता दिखाई देती है, पुण्य भाव भी बेचैनी उत्पन्न करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। पुण्य और पाप दोनों के संदर्भ में, शुभ और अशुभ दोनों के संदर्भ में, तो पूजन में लीजिए, सिमंदर भगवान की पूजन में, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ये क्या बात कर रहे हो आप? हमारे यहाँ तो अनेकांत है, आप एकांत की बात करते हो? हम तो अनेकांतवादी लोग हैं, जैन लोग तो अनेकांतवादी होते हैं, एकांत थोड़ी ना मानते हैं हम लोग। हाँ, कह रहे हो एकांत दुख की? हाँ बिल्कुल, एकांत दुख के पुण्य और पाप एकांत रूप से दुख देने वाले हैं। हम अनेकांतवादी तो है ही, लेकिन हम सम्यक एकांत को भी स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत है, दोनों बातें स्वीकार करते हैं। तो क्या कह दिया, शुभ अशुभ वृत्ति, वृत्ति मतलब प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति हो या अशुभ प्रवृत्ति हो, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अत्यंत मलिन है, संयोगी है। और कौन है इनका जन्मदाता, इनका विधाता कौन है? तो क्या कह दिया, ज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। हाँ, वो चैतन्य का विरोधी है, वो आपको पता नहीं है, ये दुश्मन की संतान है, शत्रु के बेटे हैं ये। जो चैतन्य का विरोधी है, ऐसा आश्रव भाव, ये उस आश्रव की संतान है, शुभ और अशुभ ये विरोध करने वाले हैं, ये चैतन्य का घात करने वाले हैं, ये अपने स्वभाव को काटने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। फिर आगे बहुत सुंदर मार्मिक बात कह दी, पढ़ी आपने कभी ये पंक्तियां, कांटों की पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कांटों सी पैदा हो जाती, शुभ और अशुभ, जब ये दोनों में से कोई भी वृत्ति अंतरंग में उत्पन्न होती है तो चुभन होती है, बेचैनी होती है, अंदर में पीड़ा होती है। पाप में तो सबको पीड़ा होती है, लेकिन पुण्य भावों में भी आकुलता है। मुझे बतलाइए, स्वाध्याय करने का परिणाम, प्रवचन सुनने का परिणाम, टाइम हो रहा है, देर हो रही है, फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाना है, कितना समय हो गया, कैसा लगता है अपने को? आकुलता लगती है, बेचैनी लगती है हमारे को। 8:15 गए थे प्रवचन का टाइम भी, 8:10 हो गए, जल्दी थोड़ा लेट हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा, टाइम हो गया है, और टाइम पूरा हो जाए तो लगता है बस बस अब दूसरा काम दिखता है हमारे को। मानी शुभ क्रियाओं में भी उसको करने की आकुलता, उसे बंद करने की आकुलता, ये बराबर बनी रहती है। इसलिए एकांत रूप से दुख कह दिया है इसे सम्यक एकांत कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। सम्यक एकांत किसे कहते हैं? जो बात स्वीकार करने योग्य हुए और जिसमें प्रतिपक्ष ना लगे वो सम्यक एकांत है। हमारे यहाँ अनेकांत में एकांत की भी स्वीकृति है। एक दो नहीं, सैकड़ों बातें ऐसी है जो सम्यक एकांत स्वरूप है, जिसमें अनेकांत नहीं लगेगा, जिसमें प्रतिपक्ष लागू नहीं होगा, जिसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं यदि करणानुयोग की अपेक्षा से बात करूं तो हजारों बातें कही है। आप यदि धीरू भाई से पूछेंगे तो पंडित साहब बहुत बातें बतलाएंगे आपको। मैं कुछ बतलाता हूँ। जैसे नार की जीव मर करके देव नहीं होते, एकांत से कि अनेकांत है इसमें भी?
एकांत
है। समझे कि एकांत है? देव मर करके नारकी नहीं होते, नारकी मर करके एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री भी नहीं होते। मोक्ष जाने वाले नियम से शपक श्रेणी चढ़ करके ही जाते हैं कि नहीं? नहीं, कथन चित किसी अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले भी चले जाए, कैसे जाएंगे? समझे कि एकांत है? पूर्ण संयम अंगीकार किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सैकड़ों नियम है इस तरह के। जितनी बातें नियम स्वरूप कही जाती है ये सभी बातें सम्यक एकांत है। मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा का अनुभव नहीं होता, सम्यक एकांत। आप लगाइए इस तरह की बातें, आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी। बहिरात्मा, अंतरा, परमात्मा जीव लौट करके नहीं आते, सिद्ध परमात्मा संसार में लौट करके नहीं आते, सम्यक एकांत है। अरहंत सिद्ध परमात्मा के आठों कर्मों का अभाव हो गया है। वैसे नहीं, नहीं, आठों का तो अभाव हो गया है लेकिन कुछ कर्मों का सद्भाव भी है, क्योंकि अनेकांत है ना हमारे यहाँ, तो अभाव भी हो गया है और अभाव नहीं भी हुआ है, तो दोनों बातें माने? ऐसा नहीं चलता है। जितने नियम मिलेंगे, जितनी नियम स्वरूप बातें मिलेगी जिसमें किसी तरह का कोई अपवाद नहीं है, वे सब की सब बातें सम्यक एकांत हैं और वो स्वीकार करने योग्य हैं। इसी तरह से हम ये कि हाँ, कुछ कुछ
आपने अभी कहा कि नारकी जीव मर के एक इंद्री, दो इंद्री में
नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। आप पूछिए पंडित साहब से।
नहीं तो मर के
नियम से संगी पंचेंद्रिय, नियम से
मनुष्य
संगी पंचेंद्री, तेयंच और संगी पंचेंद्री मनुष्य। इतना ही नहीं, नरक जाने वाले जीव भी सैनी पंचेंद्री ही होते हैं। असैनी पंचेंद्रियों में कुछ जीव कहे हैं जो पहली नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं, बस इससे नीचे नहीं। माने एक इंद्री नरक में नहीं जाता। कोई निगोदिया जीव, कोई पृथ्वी का एक जीव, कोई चींटी, मक्खी, मच्छर, कोई मर के नरक में चला जाए, नहीं जा सकता। ऐसा स्वरूप है, ये नियम है इस प्रकार का। माने ये तो ऐसी सैद्धांतिक बातें हैं जो अकाट्य है बिल्कुल, इसमें कुछ इफ एंड बट चलता ही नहीं है। जैसा है वैसा कहा गया है, स्वरूप ही इस प्रकार का बतलाया गया है। जब लोक की इस तरह की चर्चाएं चलती है तो बहुत सारी बातें आती है इसमें। आप चाहे कर्मों के संदर्भ में बात कर लीजिए, गुण स्थानों के संदर्भ में बात कीजिए, मार्गणा स्थान है, जीव स्थान है, लोक की चर्चा है, जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप की, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक की, स्वर्ग नरकादिक की संख्या के संदर्भ में है, जीवों के गमन और आगमन के संदर्भ में है, सब बातें सम्यक एकांत है। खैर, हमें उन बातों के विस्तार में नहीं जाना, हमें तो सिर्फ तर्क से यह बात समझानी थी कि हमारे यहाँ भी सम्यक एकांत स्वीकृत है, जो हमारे समझ में आ गई कि हाँ भाई, हम सम्यक एकांत मानते हैं। अब यहाँ पुण्य पाप को एक मानना, ये सम्यक एकांत बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं एकांत रूप से वो दोनों एक समान है। जो लोग पुण्य और पाप में फर्क करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हमें एक बात बतलाइए, आश्रव अच्छा है कि नहीं है?
आश्रव आश्रव ये बुरा ही है।
आश्रव तो बुरा ही है, इसको सबको पता है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीन है निर्वेरे। छेड़ा लगी पंक्ति है, बहुत मार ले। आश्रव दुखकार है, बहुत घने दुख देने वाले हैं। तो आश्रम मतलब पूरा ही आश्रम ना, क्या आधा आश्रम दुख देगा और आधा सुख देगा? अब बोलो, जब इतना स्पष्ट शब्दों में किसी भी जैन व्यक्ति से जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं, आप यदि उनसे पूछिए कि आश्रम अच्छा है क्या सात तत्वों में से, वो कहेंगे नहीं नहीं आश्रम तो दुखकारी है। लेकिन जब हम बात करते हैं पुण्य की, नहीं वो तो अच्छा है। अरे तो क्या बात कर रहे हो आप, आश्रम दुखकारी कह रहे हो और पुण्य को अच्छा कह रहे हो, ये दोनों बातें कैसे चल सकती है? आश्रम दो प्रकार का होता है, पुण्य और पाप ये दोनों मिलकर के आश्रम ही है, शुभ और अशुभ ये दोनों आश्रम ही है। तो यदि ये दोनों आश्रम है तो फिर पाप आश्रम बुरा और पुण्य आश्रम भला, ये कैसे हो सकता है? आप पुण्य को भला कह रहे हैं, इसका मतलब आश्रम को भला कह रहे हैं, इसका मतलब कर्मों का आना वो अच्छा हो गया, कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उसमें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एकांत रूप से दुख कह दिया, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, मलिन है और संयोगी है, संयोग से उत्पन्न। आप मतलब पुण्य भाव किसे कहते हैं और पाप भाव किसे कहते हैं? घर गृहस्थी और स्त्री पुत्रादि के लक्ष्य से होने वाले परिणाम पाप भाव हैं, और देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी नव देवता जिनवाणी शास्त्र आदि देवालय जिन देव परमात्मा जिन प्रतिमाएं आदि, इनके लक्ष्य से होने वाले भाव वो पुण्य भाव है। लेकिन दोनों ही भाव पर लक्ष्य है, घर की तरफ देखें चाहे मंदिर की तरफ देखें, घर वालों की तरफ देखें चाहे जिनेन्द्र देव की तरफ देखें, दोनों के में लक्ष्य तो पर की तरफ ही है ना, तो दोनों ही परलक्षी भाव है, इसलिए विभाव भाव है। तो स्वभाव भाव क्या है कि पर का लक्ष्य तोड़कर अपना लक्ष्य करें, वो स्वभाव भाव है। इसलिए परिवार जनों का लक्ष्य पाप भाव, जिनवाणी जिनदेव आदि का लक्ष्य पुण्य भाव, और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य तो धर्म। तीन डिवाइडेशन कर दिया अपने, तीन डिवीजन हो गए, क्या क्या? एक त्रिकाली ध्रुव, एक त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिए हुए जीव और एक उनके विरोधी जीव। तो जो त्रिकाली ध्रुव है उसके अवलंबन से धर्म होता है, और जो पंच परमेष्ठी आदि हैं हरिहंतानम सिद्धानम ये सब, उनके आश्रय से पुण्य होता है, उनके लक्ष्य से, उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से, उनके गुणानुवाद से उनसे पुण्य होता है, और उनको भी छोड़कर बाहर में उलझे तो उससे पाप होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब एकांत रूप से दुख देने वाले हैं और संयोगी हैं, क्योंकि परलक्षी भाव है। लेकिन एक बहुत मार्मिक शब्द इन्होंने यहाँ उस भक्ति में दे दिया है, उस काव्य में दे दिया है, उन्होंने लिखा है कांटों सी पैदा हो जाती, इन भावों को करने से। कहां पर? चैतन्य सदन के आंगन में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, चैतन्य सदन में नहीं आंगन तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। चेतन में नहीं है, शुभ और अशुभ की जो वृत्तियां हैं, ये शुभ और अशुभ की वृत्तियां चेतन में नहीं है, अंदर में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में ये शुभ अशुभ वृत्तियां प्रवेश कर सके ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा जो त्रैकालिक स्वभाव है, जो ज्ञायक स्वभाव है, वो ज्ञायक स्वभाव शुभ और अशुभ से सदा से ही अछूता है। अरे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण होगा, तब तो पुण्य पाप से रहित हो ही जाएगा, लेकिन जब तक मुक्ति की प्राप्ति न होवे तब तक भी मैं पुण्य पाप से रहती हूँ।
प्रवेश कर सकता ही नहीं है।
अरे ऊपर ऊपर लौटता है, आंगन आंगन में है, बाहर में पुण्य पाप कर्मों के कितनी भी आंधी तूफान चलते हो, लेकिन महल में अंदर नहीं आ सकते हो। अंदर महल में तो रत्न है, रत्नों की खान है अंदर में, तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण शक्तियाँ स्वभाव में भरी हुई है। एक एक स्वभाव, एक एक रत्न बहुत बहुमूल्य है, हमें उसकी कीमत पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि वो बहुमूल्य रत्न किस प्रकार का है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है चैतन्य का, अनादि अनंत है, ध्रुव है, अविनाशी है, नाशवान नहीं है, क्षणिक नहीं है। अस्तित्व नाम का गुण जिसमें मौजूद है, जो उसको टिकाए रखने का काम करता है, निरंतर परिणमन होता है, अपना अपना कार्य करते हैं प्रत्येक गुण, कोई गुण किसी दूसरे का काम नहीं करते, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अनंत गुण रहते हुए भी अनंत गुणों की कैसी स्वाधीन स्वतंत्र व्यवस्था है। माने कभी कभी उस वस्तु व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हैं तो हमारे को बड़ा मजा आता है कि अरे अंदर में कैसे फैक्ट्री चल रही है, अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज का, कि ज्ञान गुण से ज्ञान का प्रोडक्शन निकल रहा है, दर्शन गुण से दर्शन पर्यायों का, चारित्र गुण से चारित्र रूप पर्यायों का, श्रद्धा गुण से श्रद्धा रूप पर्यायों का, अस्तित्व गुण से अस्तित्व रूप पर्यायों का, निरंतर अनादि अनंत ये कार्य चलता रहता है। और काम देखो आप, ज्ञान गुण अकेले जानने का काम करता है तो अपने आप को ही जानता होगा, सब गुणों को भी जानता है। अच्छा ज्ञान में तो ये बात समझ में आ जाती है हमारे को कि जिस तरह से ज्ञान अपने आप को जानता है उसी तरह से ज्ञान दूसरे गुणों को भी जानता है, पर को भी जानने का काम करता है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। ठीक है, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पना क्या अनुभूति के काल में भी लागू होता है?
वही चाहिए,
होना ही चाहिए।
केवल ज्ञान में लगता, केवल ज्ञान में लगता, लेकिन दूसरे ज्ञान में नहीं लगता,
दूसरे ज्ञान में नहीं लगता। कैसे लगे?
लगता, क्योंकि बाहर अवधि ज्ञान होता तो आत्मा को भी जानते, मनोपर्यवेक्षण ज्ञान होता आत्मा को भी।
अवधि ज्ञान तो खैर आत्मा को नहीं जानता,
नहीं आत्मा को नहीं जानता, इस वक्त उसकी ज्ञान परिणति चालू होती।
देखिए स्व प्रकाशक पने में तो कोई बाधा नहीं है अपने को, जिस समय ज्ञान पर को जान रहा है उस समय ज्ञान पर्याय भी ज्ञान का विषय बन रही है। ठीक है, किस अपेक्षा से? स्व पर प्रकाशक है, ज्ञान पर्याय ज्ञान का विषय बनी, ये स्व प्रकाशक, और उस ज्ञान पर्याय में ज्ञेय पदार्थ झलके, ये उसका पर प्रकाशक बना। ठीक है, अब हमारा ये प्रश्न है कि अनुभूति के काल में जिस समय ज्ञान ज्ञायक को जान रहा है, जिस समय ज्ञान अपने आप को जान रहा है, जिस समय ज्ञान अपने स्वभाव में प्रवृत्त हो रहा है, उस समय में वो स्वपर प्रकाशक है या नहीं है? और यदि उस समय में भी स्वपर प्रकाशक है तो उस समय स्व को तो जान रहा है, पर क्या जानने में आया?
जो पर्याय आई वो ही पर है ना, जो पर्याय आई आप पर्याय से ही आप ध्रुव को जानते हैं।
बराबर,
यही पर है।
बराबर, देखिए जिस समय आत्मा अपने आप को जान रहा है उस समय में भी स्वपर प्रकाशक है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है।
स्वभाव से कभी अलग हो ही नहीं,
कभी अलग हो ही नहीं सकता। अब ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ये उसका स्व प्रकाशक पना, और ज्ञान ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गुणों को जान रहा है, ये उसका पर प्रकाशक पना। ये एक बात, ज्ञान ज्ञान को जानता है ये स्व प्रकाशक पना, और उसी ज्ञान की ज्ञान में लीनता के साथ साथ में जो आनंद जानने में आ रहा है वो ज्ञान से पर है। माने वो अलग गुण की पर्याय है ना, इस अपेक्षा है साथ में ही, बस उसको जानना वो उसका पर प्रकाशक बना।
राग को भी जानते
हैं, राग को भी जानते हैं, लेकिन अभी तो वो रागात्मक विकल्प नहीं है ना,
विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प उठते तो जानते हैं,
उठते हैं तो उसको जानते हैं,
क्योंकि अनंतानुमान दर्शन हो रहा है।
हाँ,
तो अनंतानुबंधी के राग नहीं होते, अगर राग होते वो उसको जानते भी है।
बराबर,
तो ज्ञान इस वक्त जो सम्यक ज्ञान की शक्ति कम होती तो कम प्रकार से जानते, क्योंकि सभी सभी साधक
नहीं होते। बहुत बढ़िया, लेकिन ज्ञान अपना जानने का काम कभी भी बंद नहीं करता। अब मेरा ये कहना है कि ज्ञान में तो ये बात अपने को समझ में आती है कि ज्ञान खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, क्या श्रद्धा भी ऐसा कुछ करती होगी? क्या अस्तित्व में भी ऐसा कुछ है? है बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ क्या है चक्कर, अस्तित्व गुण अकेला अपने आप को ही नहीं टिकाए रखता। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो, ये परिभाषाएं पढ़ी है ना अपन ने, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो उसे अस्तित्व कहते हैं। इसका मतलब अस्तित्व गुण अस्तित्व को तो टिकाए रखता है, अस्तित्व गुण ज्ञान को भी टिकाए रखता है, अस्तित्व गुण दूसरे अन्य अनंत गुणों को भी टिकाए रखता है। यदि अस्तित्व गुण ना होवे तो दूसरे गुण भी कैसे टिके हैं? क्या है एक्चुअल में, यद्यपि प्रत्येक गुण की स्वतंत्र एक एक पर्याय हो रही है, लेकिन फिर भी है तो वो अभेद अखंड आत्मा ही, वस्तु तो अभेद ही है ना, आत्मा तो अभेद अखंड ही है ना। तो अस्तित्व गुण अपने आप को टिकाए रखने के साथ साथ में अन्य अनंत गुणों को भी टिकाए रखने का काम करता है। वस्तुत्व गुण अपना ही प्रयोजनभूत काम नहीं करता, सबका प्रयोजनभूत कार्य जो हो रहा है उसमें वस्तुत्व गुण का योग दिखाई दे रहा है। द्रव्यत्व गुण के योग से पदार्थों का परिणमन होता है, लेकिन द्रव्यत्व गुण अपने आप के परिणमन के साथ साथ में ज्ञान के परिणमन में भी निमित्त है, दर्शन चारित्र सुखादि के परिणमन में भी निमित्त है। कौन? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण न हुए तो परिणमन रुक जावे। कैसा गजब है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिससे दूसरे के ज्ञान का विषय बने, तो प्रमेयत्व गुण ही ज्ञान का विषय बनता होगा कि नहीं? नहीं, प्रमेयत्व का रूप अस्तित्व में होने के कारण अस्तित्व भी दूसरों के ज्ञान का विषय बन सकता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बन सकता है, प्रदेश प्रत्यक्ष हो सकता है अनंतों को। हम ये कह रहे हैं एक गुण का रूप सब गुणों में है, अभेद अखंड वस्तु होने के कारण। ज्ञान का रूप दर्शन चारित्र आदि में, अस्तित्व का गुण वस्तुत्वादि में, द्रव्यत्व का रूप जो है वो सब में, एक का रूप अनंत गुणों में, अनंत गुणों का रूप एक गुण में। इसलिए वास्तव में ये जो दशा दिखाई देती है इसमें सब में ऐसी यूनिटी है, ऐसा संगठन है जो एक दूसरे में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, और इसे ही अंतरंग निमित्त कहेंगे हम। हमेशा जब भी निमित्त के संदर्भ में बात होती है, पांच समवाय के संदर्भ में, हम ये समझते हैं निमित्त तो परद्रव्य में और बाकी चार अंदर में है। पांच समवायों में से चार समवाय तो अंतरंग में है और निमित्त बाहर में, ऐसा लगता है अपने को, लेकिन नहीं है ऐसा। अभी हमारे को बाहरी निमित्त की भी खबर नहीं है, हम तो यहाँ अंतरंग निमित्त की बात कर रहे हैं आपसे। हम ये कह रहे हैं ज्ञान गुण के परिणमन में कौन निमित्त है? बोलिए, दो तीन बातें हो सकती निमित्त की अपेक्षा से।
परिणमन में द्रव्यत्व,
ज्ञान गुण के परिणमन में द्रव्यत्व गुण निमित्त है, ठीक है। अब स्थूल दृष्टि से देखें, ये तो अंतरंग निमित्त हो गया, बहिरंग पने की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे काल द्रव्य निमित्त है, परद्रव्य काल द्रव्य वो निमित्त है। और स्थूल दृष्टि से यदि हम बात करें तो ज्ञानावरणी कर्म का उदयादिक निमित्त है, उदय क्षयोपशम क्षय, ये ज्ञान के विकास में क्षयोपशम में उन सब में निमित्त है। लेकिन अब इन चीजों को निमित्त न मानकर और बाहरी स्थूल बातों को निमित्त मानना तो कैसा निमित्त हो गया? अभी तो निमित्त की भी खबर नहीं है हमारे को, असली निमित्त की भी खबर नहीं है। कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा भ्रम है हमारे को, निमित्त के संदर्भ में भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। हम अंतरंग निमित्त के संदर्भ में बात करते हैं कि अंतरंग निमित्त भी अंदर में ही मौजूद है, तो पांचों समवाय अंदर में ही है, बाहर में किसी समवाय की जरूरत ही नहीं, बाहर में किसी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमारे को बाहर में, सब अंदर में मौजूद है। यहाँ पुण्य और पाप जो वृत्तियां हैं, ये दोनों ही वृत्तियां बाहर में होती है, दोनों ही वृत्तियां आंगन में होती है, दोनों ही वृत्तियां हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती, इसलिए उनकी तरफ लक्ष्य करना योग्य नहीं है। इस तरह से यहाँ जो 77 नंबर की जो गाथा है उस गाथा के अंदर इन्होंने इस तरह की बात कही थी। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, गुजराती में लिखी है पंक्तियां। नहीं मान तो ए रीति पुण्य पाप मान विशेष छे ते मोह थी आछन्न घोर अपार संसारे भमे। सरल बात बात कह दी है उन्होंने यहाँ। हिम्मत भाई का है ही पर ध्यानवाद किसका है? हिम्मत भाई ने तो उसकी वो व्याख्या की। देखिए खैर नहीं मान तो नहीं मानता है ये रीति ये रीत पुण्य पाप मान न विशेष छे। पुण्य और पाप में ना विशेष छे अंतर नहीं है। न मान तो ये रीत ऐसा नहीं मानता है। मोह से आचिन्न मोह हावी हो रहा है उसके ऊपर। इसको क्या लग रहा है? पुण्य की महिमा आ रही है। सबसे बड़ी समस्या देखो आप कितनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इस जीव को अपने आत्मा की महिमा नहीं आ रही और पुण्य की महिमा आ रही। पुण्य पुण्य की महिमा में अटका हुआ है। शुभ भाव की महिमा आ रही है, व्रतादिक की महिमा आ रही है, पूजन भक्ति की महिमा आ रही है, आयोजनों की महिमा आ रही है, प्रतिष्ठाओं की महिमा आ रही है, क्षेत्रों की महिमा आ रही है। ये सब पुण्य की महिमा है ना। पर की महिमा आई, अपनी महिमा नहीं आई। ये पर की महिमा आना ये किसकी महिमा है? ये मोह की महिमा है। तो कहते हैं पंडित जी, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो, कैसी मोह की महिमा है हमारे मन में? ऐसी मोह की महिमा समाई हुई है, मोह बसा हुआ है मानो हमारे मन में। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। किस किस चीज की महिमा नहीं आती है हमारे? गाड़ी बंगलों की महिमा आती है, दुकान की महिमा आती है, बिजनेस की महिमा आती है, और ये नए नए गैजेट्स निकलते हैं कि वो क्या गजब है, ऐसा बटन दबाते ही ऐसा हो जाता है, चमत्कार दिखते हैं हमारे को, साइंस के चमत्कार दिखते हैं हमारे को, सब ऑटोमेटिक मशीनें दिखती है। किन चीजों की महिमा आती है? पुद्गलों की महिमा आती है, चेतन की महिमा नहीं आती, आत्मा की महिमा नहीं आती, आत्मा के गुणों की महिमा नहीं आती। पुद्गल चमत्कारिक दिखाई देता है, आत्मा के चमत्कार नहीं दिखाई देते। चैतन्य चमत्कार नहीं दिखाई देते अपने को? चैतन्य के कैसे अभूतपूर्व चमत्कार है। अरे जगत में रिद्धियों की भी यदि बात करें तो चैतन्य का अवलंबन लेने वालों के पास में जो रिद्धियां प्रकट होती है, वैसी रिद्धियां वैसे चमत्कार जगत में किसी और के पास में नहीं होते। बाहरी चमत्कारों की यदि हम बात करें तो 64 रिद्धियां, आप रिद्धियों का प्रकरण उठा करके देखें तिलोय पंडित आदि ग्रंथों से, आपको लगेगा क्या गजब बातें बतलाई, ऐसी ऐसी रिद्धियां हो जाती है। अवधि ज्ञान और मने पर ज्ञान भी कम रिद्धि नहीं है। मने पर ज्ञान के माध्यम से क्या जानते हैं हम? मने पर ज्ञान का भी यथार्थ स्वरूप नहीं समझते महेंद्र भाई। मने पर ज्ञान का स्वरूप क्या समझते हैं अपन? हम ये समझते हैं दूसरे के मन की बात को जाने, बस यही है ना, कि और भी कुछ बात है इससे ज्यादा जान सकता है? आप मेरे मन की बात को जान ले रहे, इतना ही है कि और भी कोई बात है इसमें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है तो साहब इसमें क्या हो गया? तो हम ही जानते थे। नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का मतलब ये है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं रमेश भाई वो तो जानते ही हैं। आप कल क्या सोचने वाले हैं वो भी जान लेते हैं। आप 10 साल बाद में आपके कैसे परिणाम होंगे, 25 साल पहले आपने कैसे परिणाम किए थे वो भी जान लेते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं जानेंगे तो काल की मर्यादा में क्या बात लेंगे? मने पर ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है ना, तो काल की मर्यादा को लेकर के इसका मतलब क्या है? 100 साल की लिमिट, आगे 100 साल तक की बातों को जान लेगा। तो आगे 100 साल तक की बातों को कैसे जानेगा? वो परिणाम तो किए ही नहीं है कि किए नहीं है, लेकिन इसके ऐसे परिणाम होंगे
बता कैसे सकते कि पांच भोग के बाद ये मुक्त जाने वाला।
कैसे बताएंगे?
वो व्यक्ति बता देने की इसका मुक्त पांच भोग के बाद है।
मन की बात पता लगती है, लेकिन वर्तमान मन की नहीं, भविष्य में उस मन में क्या आएगा वो बात भी पता लगती है। होता है इस तरह का। मान लीजिए कोई पहुंचे मुनिराज के पास में, मने पर ये ज्ञानी मुनिराज है, कोई श्रावक पहुंचा और उसने कहा महाराज क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान हूं, हमारे से एक ही बेटा है और ये कभी स्वाध्याय नहीं करता, हमने खूब तत्व ज्ञान प्राप्त किया, कृपालु देव का, गुरुदेव का, खूब हमारे को तो खूब समागम मिला, हमने खूब लाभ प्राप्त किया, खूब जिनवाणी है, हमने मंदिर भी बनाया है, लेकिन ये एक बेटा ये मंदिर ही नहीं आता है, अब कौन आगे संभालेगा, बहुत चिंता है कि कभी होगा क्या, कभी इसका भी बदलेगी, जीवन बदलेगा। तो मुनिराज आपके सामने बैठे हैं, मुनिराज अपने मन पर यह ज्ञान में उस बालक को देखते हैं, उस बालक के वर्तमान परिणामों को देखते हैं और उस बालक के भविष्य के परिणामों को देख करके बतलाते हैं कि 15 साल बाद में ऐसा टर्निंग प्वाइंट आएगा, आप चिंता मत करो, उसके बाद में पूरी तरह से इसी सब में लग जाएगा। बता सकते हो मुझे मने पर ये ज्ञान में बात कितना गजब है, मने पर ये ज्ञान का स्वरूप, हमने सिर्फ इतना समझ लिया कि सामने वाले के मन की बात को जान ले रहे, इतना सा नहीं है, बहुत स्थूल बात है, ये तो सामान्य व्याख्या होगी कि मन की बात को जानता है सामने, सामने वाले की कोई यदि जानेगा तो फिर द्रव्य की मर्यादा का क्या मतलब रहा, क्षेत्र की मर्यादा का क्या मतलब हुआ, क्षेत्र की मर्यादा का मतलब ये है कि सामने नहीं हो कहीं दूर हो तो भी जान लेवे, तब तो क्षेत्र की मर्यादा होगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है ना, जैसा कि सामने है जान लिया हमने, अरे सामने नहीं इंडिया में है और वो क्या सोच रहे हैं, ये क्षेत्र की मर्यादा, कितने क्षेत्र की, कितने मील तक की, सबका अलग अलग है लिमिट, कितने योजन तक की बात को जाने, कितने कोष तक की बात को जाने, ये उसके क्षयोक्षम के ऊपर निर्भर करता है, मने पर यह ज्ञान कितना है, त्रिजुमति वाला कितना जानेगा, विपुलमति मने पर यह ज्ञान वाला कितना जानेगा। लेकिन अपने को इस दृष्टि से भी जहाँ जहाँ जैसे प्रकरण आए हैं द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा, तो ये बात अपने को बहुत गहराई से विचार करने योग्य है उस संदर्भ में कि किस तरह की बातें उनके ज्ञान का विषय बनती होगी। ये रिद्धि है
वो कितनी शक्तिशाली है,
हाँ?
लब्धि रिद्धि,
हाँ?
तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते,
और वो रिद्धि किसी और की नहीं है, वो रिद्धि अपने अपनी है,
अपनी है।
हम कह रहे हैं कि अपनी रिद्धियों की महिमा नहीं आई हमारे को, अवधि ज्ञान रिद्धि कितनी जबरदस्त है, और केवल ज्ञान तो सुपर है, ये तो क्या बात करें हम, सर्वोत्कृष्ट है, ये तो ज्ञान रिद्धियों की चर्चा हुई, मैं ज्ञान रिद्धियों के संदर्भ में ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूँ आपसे, अभी कभी 5-7 दिन में अपने को विषय आएगा, अपन ज्ञान के चमत्कारों की चर्चा करेंगे। आप ज्ञान के अतिरिक्त चार रिद्धि प्रकट हो जाती है, बीज रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि है, आकाश मार्ग से गमन करने लगते हैं, कितने प्रकार की रिद्धियां इस तत्व ज्ञान के अवलंबन से, तत्व के अवलंबन से, वस्तु स्वभाव के अवलंबन से ज्ञानियों के मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती है, उनको पता ही नहीं। विक्रिया रिद्धि प्रकट हो जाती है, विष्णु कुमार मुनिराज का प्रसंग तो सबने सुना है, हमने रक्षाबंधन की कथा में सुना है ना, बड़े और छोटे होने सुना है, रक्षाबंधन का प्रसंग नहीं सुना आपने, हाँ, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ था और वो किसी नगर में गया था, तो वहाँ के राजा जब दर्शन करने के लिए गए तो उनके चार मंत्री थे, वो चारों मंत्री बहुत विरोधी थे और वो राजा के साथ में गए, सभी मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, तो वापस लौटते समय ये जो मंत्री थे ये मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज सब मूर्ख है, मौनम मूर्खस्य आभूषणम, मौन मूर्खता का आभूषण है, कुछ आता होगा तो बोलेंगे ना, ऐसी बुराई करने लगे राजा से। बुराई करते हुए चलते हुए जब आ रहे थे तो मुनिराज तो इसलिए चुप हो गए थे, आचार्य तो इसलिए चुप हो गए थे कि उनको पता था कि ये सब मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी है, उनसे क्या चर्चा करना है। आचार्य श्री ने अपने संग में निर्देश दे दिया कि हम मौन रहेंगे। लौट करके आते समय सामने से एक और मुनिराज मिले, श्रुत सागर, जी जब मुनिराज सामने से मिले उनको तो पता नहीं था कि मौन का उपदेश दिया है, आदेश दिया है आचार्य जी ने, आहार करके थोड़ा देर से देर हो गई थी, लौट के आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में उनसे वाद विवाद कर लिया, चर्चा करने लग गए और उन चारों ही मंत्रियों को परास्त कर दिया। और जो राजा के सामने उनकी बहुत अपमान हुआ उन चारों मंत्रियों का, कोई बात नहीं वो लौट करके आ गए। ये जो सुसागर मुनिराज थे जब संघ में पहुंचे और आचार्य श्री को अपनी पूरी बात बतलाई तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, पता नहीं था कि कोई बात नहीं इसको प्रायश्चित करो, और जिस जगह पर वाद विवाद हुआ था जिस मार्ग में वहीं जाकर के आज तुम तपश्चरण करो और वहीं रहना है तुम्हारे लिए। रात्रि में चारों मंत्री बदला लेने की भावना से हाथ में तलवारें लेकर वहां मुनि संघ की तरफ आ रहे थे और रास्ते में उन्हीं मुनिराज को खड़े हुए देखा शुद्ध सागर को। तलवार से चारों ने प्रहार करने का प्रयास किया और चारों कीलित हो गए, तलवार हाथ में और कीलित हो गए वही देव शक्ति से। सुबह हुई तो सारी प्रजा जनता सबको सबने देखा वो दृश्य, तो उनका वो दूर किया संकट और राजा ने उन चारों को देश निकाला दे दिया। अंदर में बदले की बहुत भावना थी, मंत्री थे बुद्धिमान तो थे, चले गए वहां से दूसरे राजा के यहाँ। अब दूसरे राजा के पास में जब पहुंचे और वहां अपने बुद्धि से राजा को जीत लिया, उसका मनोबल जीत लिया, राजा ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, हम बहुत खुश हैं तुमसे, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि समय आने पर मांगेंगे। चार मंत्री थे बलि नमुचि बृहस्पति प्रहलाद। जब वो अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों का 700 मुनिराजों का संग आया उस नगर में तो बदला लेने की भावना से बलि ने ये कहा राजा से कि मुझे 7 दिन के लिए राज्य चाहिए, 7 दिन का राज्य मांग लिया, 7 दिन का राज्य मांग लिया, उसको राज्य दे दिया क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध था, प्रतिज्ञा वचन दे दिया था। 7 दिन का राज्य लेकर के उस बलि ने उन 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उत्सर्ग करना शुरू कर दिया, चारों तरफ आग जलाना, चारों तरफ घास लगा देना, मुनिराज घास पर चलते नहीं है, हैं? और अग्नि से धुआं ही धुआं उनके अंदर जाने लगे, बहुत बहुत उनको परेशान किया, बहुत महासंकट 5-7 दिन तक घोर अपार संकट और उपसर्ग उनके ऊपर करता रहा। इस घटना की खबर कहीं दूसरे मुनि संघ में पड़ी तो ऐसा मालूम चला कि कोई विष्णु कुमार नाम के मुनिराज है और उनके पास में विक्रिया नाम की रिद्धि है, उनको पता नहीं था, उनके पास में संदेश भेजा गया कि आपके पास में ऐसी ऐसी विक्रिया रिद्धि है और आप इस विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो। उन्होंने कहा मेरे पास रिद्धि? हाँ ऐसा कहा है दूसरे मुनिराज ने अपने ज्ञान में देख करके, अपने ज्ञान में देखा कि कौन से ऐसे मुनिराज है जिनके पास में रिद्धि है इस प्रकार की, तो मालूम चला कि वो विष्णु कुमार है। उनके पास में गए, विष्णु कुमार ने हाथ ऐसे ऊपर करके देखा तो हाथ एकदम बढ़ गया। विक्रिया रिद्धि मतलब अपने शरीर को कितना भी छोटा कर सकते हैं और कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसी एक रिद्धि, उसका नाम है विक्रिया रिद्धि। फिर क्या हुआ, वे एक छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाया उन्होंने और राजा बलि के दरबार में गए, मुनि पद छोड़ दिया, गृहस्थ हो गए। समझिए अब आसान काम नहीं है, मुनि अवस्था में रहते हुए ये उपसर्ग दूर करने का काम नहीं किया जा सकता है। गृहस्थ होकर के कपड़े पहन करके छोटे से बावलने का रूप बनाकर बलि के दरबार में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। बलि ने कहा बोलो क्या मांगते हो? वो 3 पांव जमीन चाहिए। हंसने लग गया, 3 पांव जमीन चाहिए इसको, कितना सा है ठिकना सा, इतना छोटा सा दिखता है, 3 पांव जमीन क्या कर लेगा ये? हाँ ठीक है। जब बलि ने 3 पांव जमीन की बात कही तो उन्होंने अपना रूप बहुत विशाल बना लिया और एक पैर मेरु पर्वत पर और एक मानुष उत्तर पर्वत पर रख करके तीसरा पैर बलि के सर पर रखा, उपसर्ग दूर हुआ, बलि मर करके नरक में चला गया और 700 मुनिराजों की रक्षा हुई और वो पर्व उस दिन से रक्षाबंधन पर्व के नाम से जाना जाने लगा।
इसकी मूवी भी बनी है। अच्छा। बहुत 50-60 वर्ष पहले।
अच्छा।
नाम था वामन अवतार।
अच्छा।
ए हिंदू में भी है,
हिंदू में भी है। वामन अवतार
कितना पापी था।
हाँ।
तो इसको ये लोग जो विष्णु कुमार को आपके
हाँ।
वो विष्णु का
अवतार, विष्णु का अवतार मानते हैं,
या विष्णु मुनि हम जो कहते हैं।
हाँ हाँ,
वो मुनि जैन मुनि की बात नहीं है, वो उनके में अवतार है,
अवतार
उसको वामन अवतार कहते हैं।
ठीक है,
वो तीन पगला मान,
तीन पगला मान,
उनका एक गीत भी है।
अच्छा,
वो मूवी भी हमने देखी है, ब्लैक एंड व्हाइट में थी, आज कुछ ऑलमोस्ट आई वुड से 60 इयर्स अगो।
ओ,
वामन अवतार,
वामन अवतार,
मूवी का पुराण कथा है, लेकिन इसे उसकी बात
ऐसे जैनों के, क्योंकि वो हत्याचारी था,
क्रूर
था, ऐसे बताते हैं हिंदू में।
वामन अवतार के नाम से वो मूवी,
और पीछे अवतार लेते हैं।
तो ये जो घटना है, इस घटना से रक्षाबंधन पर्व शुरू हुआ, लेकिन बहुत मार्मिक पॉइंट है यहाँ महेंद्र भाई। क्या मार्मिक पॉइंट है? कि यदि 700 मुनिराजों की रक्षा करने से ये पर्व शुरू हुआ है, तो इसका नाम रक्षा पर्व होना चाहिए था, रक्षा बंधन पर्व क्यों हुआ?
तो बंधन हुआ,
तो बंधन हुआ,
बंधन हुआ।
रक्षा बंधन का अर्थ है रक्षा करने का भाव भी बंधन का कारण है।
वो हम समझते नहीं,
वो नहीं समझते हम,
रक्षा बांधने की बात सोचते
हैं। हाँ, रक्षा करने के भाव से भी बंधन होता है, रक्षा करने का भाव भी बांधने वाला है, बंधन है। और विष्णु कुमार मुनिराज को जो 700 मुनिराजों की रक्षा का भाव आया था, उससे उनको बहुत कर्म का बंधन हुआ। मनुष्य छठे सातवें से गिर करके चौथा रह गया, कर्मों का आश्रय तीव्र हो गया, कर्मों का बंधन तीव्र हो गया, रक्षा करने के भाव से अपार बंधन हुआ उनको। रत्मानुयोग प्रशंसा करता है, लेकिन द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग निंदा करता है। अरे अरे, गिर गए भूमिका से, गिर गए अवस्था से, गिर गए। कहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर प्रसंवेदन का वेदन करते थे, और कहाँ अब गिर गए, तो अवस्था गिर गई। ऐसा रक्षा करने का भाव भी बंधन का कारण है। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, आकाश मार्ग से गमन करने की रिद्धि। कहते हैं आचार्य कुंद के पास भी इस प्रकार की रिद्धियां थी। विदेश क्षेत्र चले गए थे श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, हो गया था ऐसा उनके साथ में ऐसे जीवन में। और एक पूज्यपाद नाम के आचार्य और हुए हैं,
उनको भी हुए,
उनके भी कहते हैं कि विदेश क्षेत्र गए थे वो भी। दो मुनिराजों के बारे में चर्चा मिलती है, कलेष्टोप देश की आप बात कर रहे थे ना, वही पूज्यपाद आचार्य। ऐसे उनमें भी आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी। और भी इस तरह से चारण रिद्धिधारी की चर्चा आती है बहुत, 64 रिद्धियों की चर्चा पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी चमत्कारिक रिद्धियां दिखती है। लेकिन हम ये कहते हैं महिमा रिद्धियों की नहीं है,
महिमा
तत्व की है, शुद्धात्म तत्व की है। अरे आत्म तत्व का अवलंबन लेने पर सारी रिद्धियां प्रकट होती है, जैसे आत्म तत्व का अवलंबन नहीं हो उसके जीवन में एक भी रिद्धि नहीं है। रिद्धियां प्रकट हुई लेकिन रिद्धियों की भावना से नहीं, रिद्धियां प्रकट हुई लेकिन रिद्धियों का लक्ष्य करने से नहीं। हमें बताओ रिद्धियां प्रकट कैसे हुई?
तत्व की
श्रद्धा करने से, आत्मा की श्रद्धा करने से, आत्मा का लक्ष्य करने से, आत्मा का अनुभव करने से वो रिद्धियां प्रकट हुई है। हमें सामर्थ्य तो आत्मा की है, हमारे को अपनी सामर्थ्य और अपनी महिमा नहीं आकर के पर की महिमा आती रही, ये संसार में परिभ्रमण का कारण है। और इस सब के पीछे दर्शन मोह हावी रहा है, तो बात वहां कही उस लाइन में, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, मुझे अपनी ही महिमा ने आई। सबकी महिमा आ रही है, अपने आप की महिमा नहीं आ रही, अपने आप को जानना नहीं चाहता है। यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष का उपाय है। पुण्य और पाप को एक कह करके कह रहे हैं, मोह थी आछिन्न से मोह थी आछिन्न, मोह हावी हो गया है उनके ऊपर। समझिए आप, मोह की वो क्या कहते हैं, वो पड़ी है वाक्षेप, बहुत भूत क्या भुरकी पड़ी है, ऐसा कुछ किसी ने पटक दी, सब भूल गया कि मोह में ऐसी हालत हो रही है हमारी। अनादि काल से ऐसी वृत्ति चल रही है जिसके कारण अपने ही स्वरूप की खबर नहीं है। लेकिन जो इस मोह के रहते हुए, इस मोह के अभाव करने के लिए प्रयास करते हैं, वे जीव वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं। धन्य है वे जीव जो देह में रहते हुए भी देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, देह के अतीत वर्तते हैं देह में रहते हुए भी। क्या गजब बात है, घर में रहते हैं लेकिन घर से भिन्न, देह में रहते हैं लेकिन देह से भिन्न। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ये कौन है ऐसे ज्ञानी लोग हैं इस प्रकार के। सम्यक दृष्टि से लेकर के और अरहंत परमात्मा तक सभी ज्ञानियों की यही दशा है, और सिद्ध परमात्मा तो देह से भी अतीत हो गए हैं। चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक देह मौजूद है अभी, शरीर मौजूद है अभी, लेकिन शरीर के प्रति अपनापन किसी के भी नहीं है। शरीर होते हुए भी अपने आप को निरंतर 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 शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, ऐसा स्वरूप है ज्ञानी जीवों का। तो 77वीं गाथा में जो बात कही है इसने कह दिया, घोर अपार संसार में यदि परिभ्रमण नहीं करना चाहते हो तो दोनों को एक समान मानना चालू कर दो।
एक और सवाल है,
हाँ,
जो मोक्ष मार्ग में जो जीव चलता है तो चलना चाहता है उसको पुण्य पुण्य तो आपो आप मिलता ही है,
हाँ,
बल्कि अपना नहीं मानता है।
सही बात है,
तो इतना ही फर्क है।
सही बात है,
फर्क लोगों के दिमाग में बैठना नहीं है, क्योंकि वो जो बुद्धि है ना कि मुझे पुण्य से लाभ है वो ही खतरनाक मान्यता है।
बस बस
मोक्ष मार्ग में चलने वाला पुण्य ही करेगा, पाप से तो दूर रहेगा ही,
अपने आप ही हो जाता है,
करना नहीं पड़ता,
करना नहीं पड़ता है। पुण्य की चाह से पुण्य नहीं होता, धर्म करने वालों को पुण्य सहज होता है। ऐसा स्वरूप है। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो देते हैं, वो किसान खेती करता है और धान्य उगाता है, जो धान्य के लिए खेती करता है उसको घास फूस और चारा अपने आप मिलता है, लेकिन जो चारे के लिए खेती करना चाहता है उसे चारा भी नहीं मिलता और धान्य भी नहीं मिलता। खेती किसके लिए कर रहा है? तो एक अरे साहब, मनुष्यों के लिए तो सभी करते हैं, अपने अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने पशु भी हैं, गाय भैंसे भी हैं, तो बेचारे कितना बैल जो है जोतते हैं अपन, इनके लिए चारा भी अपने को उगाना चाहिए। तो चारे के लिए खेती करें तो चारा भी उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, होता ही नहीं है। आप धान्य का लक्ष्य रखो तो चारा करना पड़ेगा, तो होगा वो तो घास फूस की तरह। जो धर्म का लक्ष्य रखते हैं, जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य रखते हैं, उनको ये तो घास फूस की तरह अपने आप पुण्य तो साथ में लग जाता है। उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां भी उन्हीं जीवों के जीवन में बंधती है, पुण्य प्रकृतियां भी उन्हीं जीवों के जीवन में जिन्हें अपने आत्मा का लक्ष्य है। चक्रवर्ती कौन बनते हैं? नारायण प्रतिनारायण की पदवियां किनको बंधती है? जिनके जीवन में पहले सम्यक दर्शन हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में वे पदवियां बंधती है, वे पदवियां मिलती है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलती। मिथ्या दृष्टि जितना पुण्य करना चाहे नहीं होता। मिथ्या दृष्टि कितना करे जी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, कितना काम करे, कितना काम फैलाए, तो कुछ नहीं होता है, उससे नहीं होगा, आत्मा के लक्ष्य के बिना नहीं होगा। इसलिए महिमा अपनी ही है, और पुण्य पाप को छोड़कर अपनी महिमा में ही सार है। हम सभी को अपनी महिमा आए, और अपनी महिमा जानकर हम पुण्य पाप से पार अतिंद्रिय आनंद का स्वाद ले, इसी भावना से बात करें।